खुदावन के मुकद्दस और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र है कि उसने आज का दिन हम सबको फिर बख्श दिया कि हम उसके तख्त के सामने हाजिर हों और उससे आज के दिन के लिए, जैसे बनी इसराइल कौम जब बियाबान में थी, ज़रूरतमंद थी और वो शिकायत कर रही थी, तो उन्होंने मूसा से कहा कि क्या तू हमें यहाँ पर मरने के लिए मिस्र से निकाल लाया है, बियाबान में भूखा प्यासा छोड़ देने के लिए ले आया है। तो मूसा ने दुआ की और खुदा ने आसमान से मन बरसाया। इसी तरह आए हम सब खुदा के हजूर झुके, क्योंकि खुदा का बंदा याकूब कहता है कि खुदा से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यर्मिया नबी कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। और आपको याद होगा कि दानियल जब उसने खुदा से दुआ की तो खुदा ने उसे ना के ख्वाब की ताबीर बल्कि आने वाले वक्त के बारे में भी बताया। सो आए हम सब उसी खुदा को जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने अजीब अजीब काम किए, जिसका नाम यहोवा यरी है, जिसका नाम यहोवा श्यामा है, जिसका नाम यहोवा निसी है, जिसका नाम यहोवा शालूम है, उसे पुकारें। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा को पुकारें और आज के लिए अपनी तरबियत और नसीहत के लिए उसका कलाम मांगे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम सब तेरे हजूर आते हैं आज सुबह, हम सबको अपने कलाम की रोटी से सेर कर, क्योंकि तूने अपने कलाम में कहा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो तेरे मुंह से निकलती है। तो खुदावंद आज हम जो कुछ भी सीखें हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में हम सबको सुनने की, समझने की और अमल करने की कुवत और ताकत दे। ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो जो बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाब, आज हम उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हमने 18वीं आयत को मुकम्मल किया। 19वीं आयत से पढ़ेंगे और यहां से सीखेंगे कि पालूस रसूल हमारी तवज्जो किस बात पर दिलाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपना माल अपना खजाना इस जमीन पर जमा ना करो, क्योंकि यहाँ इस जमीन पर चोर नकब लगाता है, यानी कि जिसे कहते हैं सन लगाना, चोरी करने का रास्ता ढूंढ सकता है। इस जमीन पर माल दौलत को कीड़ा लग सकता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अपना माल अपना खजाना आसमान पर जमा करो। तो पालूस रसूल यहाँ पर इफिसियों दो बाप उसकी 19वीं आयत में सिखाते हुए ईमानदारों को कहता है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफर नहीं रहे बल्कि मुकसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। 20वीं आयत, और रसूलों और नबियों की न्यू पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है तामीर किए गए हो, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदा का बंदा पालूस रसूल यहां पर कहता है, पस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। क्यों पालूस रसूल इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है? क्योंकि जब हम इसी बाब के पिछले हिस्सा को देखते हैं जो हमने सीखा, मिसाल के तौर पर 12वीं आयत को, अगर हम 19वीं आयत को समझना चाहते हैं, इस जुमले को, इस कलाम को जो पालूस ने लिखते हुए रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में बाइबल मुकद्दस के इस मकाशवा को दर्ज किया, लिखा कि पस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। आप सबको याद है, आप सबको इस बात से वाकिफियत है कि परदेसी और मुसाफिर किसे कहते हैं। परदेसी वो शख्स को कहा जाता है जिसमें लड़का, लड़की, मर्द या कोई भी शख्स उसमें शामिल है। परदेसी यानी कि जिसका कोई देश नहीं होता। और मुसाफिर वो जो किसी सफर के लिए निकला हो। सो पालूस रसूल यहां पर कहता है, ईमानदारों गौर से सुनो, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। क्यों वो ये कहता है? जब हम 12वीं आयत को देखते हैं तो वो इस बात को सिखाता है कि तुम अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और खुदा के वाद और खुदा और वादों के ओहदों से ना वाकिफ और ना अमीर और इस दुनिया में खुदा से जुदा थे। उसके कहने का मतलब यह है कि जब तुम खुदा से रफाकत नहीं रखते थे, जब तुम खुदा को, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो तुम मसीह से क्या थे? जुदा थे। इसराइल का जो शहर था उसके साथ तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं था, उससे मुकम्मल तौर पर खारिज थे। और हमने सीखा था कि जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो इसराइल की हद से उसे बाहर निकाल दिया जाता था, या उस शहर के गिर्द जो दीवार होती थी, शहर में जाने के लिए दरवाजे होते थे, तो उस कोड़ी को बाहर निकाल दिया जाता था, खारिज कर दिया जाता था, दूर कर दिया जाता था। तो पालूस कहता है कि जब तुम मसीह से वाकिफ नहीं थे, जब तुम नए सिरे से पैदा नहीं हुए थे, जब तुमने मसीह की निजात हासिल नहीं की थी, तो तुम क्या थे? मसीह से जुदा, इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ और ना अमीर और दुनिया में खुदा से जुदा थे। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि तुम्हारा कोई वतन, तुम्हारी कोई मेरास, तुम्हारे लिए कोई जगह खुदा के मंसूबा और खुदा के घर में और खुदा के खानदान में ना थी। लेकिन क्या हुआ? 13वीं आयत में कहता है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसू में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए, क्योंकि मसीह ने तुम्हें अपनी कुर्बानी के वसीला से जो दुश्मनी थी उसे दूर कर दिया। तुम जो पहले दूर थे अब नजदीक हो गए हो। तुम जो पहले दुश्मन थे अब दोस्त बन गए हो। तुम जो पहले खुदा की नेमतों बरकतों से नावाकिफ थे अब वाकिफ हो। इसीलिए पालूस रसूल इन सारी बातों को कहता है कि तुम नए सिरे से पैदा हुए हो। और 18वीं आयत में हमने यही बात सीखी थी, इससे पहले कि हम 19वीं आयत को समझें। 18वीं आयत में पालूस क्या कहता है? क्योंकि उसी के वसीला से, किसके वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम क्या हुए? खुदा के फर्जंद बने, हम नए तौर पर पैदा हुए, हमें मसीह का बदन यानी कि कलीसिया बनने का नाम मिला, हमें रूहुल कुद्दस की रहनमाई मिली। तो पालूस कहता है 18वीं आयत में इफिसियों 2 बाब, उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में, यानी कि अगर कोई यहूदी है, यूनानी है, अब्रानी है, कोई भी है, किसी भी कबीले, किसी भी नस्ल से, कोई भी उसका रंग है, कैसी भी जुबान बोलता है, गुलाम है, आजाद है, हिंदू है, सिख है, पठान है, जो कोई भी है, जो कोई यीशु मसीह को कबूल, पालूस रसूल कहता है, कर लेता है, वो मुसाफिर और परदेसी नहीं है। और कहता है कि उसी यीशु मसीह के वसीला से ना कि समय तुम्हें पाक रूह की कुदरत मिली है, बल्कि खुदा बाप के पास जाने का हक मिला है। इस जमीन पर वाहद मसीहत है जो इस बात का बड़े दलेरी के साथ इकरार करती है कि तुम्हें खुदा तक रसाई या पहुंच है। और वाहद खुदावंद यीशु मसीह है जिसने ये कहा है कि मैं रास्ता हूं, जो आयत यीशु मसीह के कलाम में जब यीशु मसीह ने बोली, यूहन्ना की इंजील 14 बाप उसकी 6 आयत, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई और नहीं, कोई और ऐसा नहीं है जमीन पर जिसने ऐसा दावा किया हो, और सवाए मसीहत के किसी और को ऐसी बरकत हासिल ही नहीं। सो खुदा ने हमें रूहानी तौर पर इसराइली बना दिया और उन तमाम नेमतों बरकतों को जो इब्राहिम के वसीला से उस कौम को मिली, अब हम सबको मिलती हैं। और यही बात पालूस रसूल सिखाना चाहता है कि पस अब तुम परदेसी और मुसाफर नहीं रहे। आप और मैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम परदेसी यानी कि देश के बगैर नहीं हैं। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये हमारा सही देश नहीं है, असली वतन नहीं है। हमारा जो असली वतन और देश है वो कहाँ पर है? आसमान पर है। और यही बात पालूस रसूल सिखाना चाहता है कि ईमानदारों, पस अब तुम परदेसी और मुसाफर नहीं रहे, बल्कि किस बात की तवज्जो दिलाता है? बल्कि यानी कि जरा गौर से सुनो, जरा इस बात की तरफ तवज्जो करो जो कुछ मैं कहने को हूं, जो सच्चाई मैं बयान करने को हूं। बल्कि मुकद्दसों के हम वतन, मुकद्दसों से मुराद यानी के पाक लोग जो अलहदा किए हुए, बेऐब, जिनमें कोई ऐब नहीं, यानी के खुदा के खून खरीदे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के कफारे को कबूल किया। बाइबल मुकद्दस उनको क्या कहती है? मुकद्दस लोग। बेशक आप सोचते होंगे, ओ मैं तो झूठ बोलता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं नाफरमानी करता हूँ, मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, मैं फलां फलां गलतियाँ खताएं करता हूँ। हम सब करते हैं, लेकिन सवाल ये, यहाँ पर पालूस कहता है बल्कि मुकद्दसों के हम वतन। वो याद दिलाना चाहता है कि तुम मुकद्दस लोग हो, अगर तुम मुकद्दसों की तरह जिंदगी नहीं गुजार रहे तो तुम्हें गुजारने की जरूरत है। अगर तुम गालियां बकते हो तो तुम्हें गालियां बकने की, पालूस कहता है, जरूरत नहीं। अगर झूठ बोलते हो तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अगर बदी करते हो तो बदी करने की जरूरत नहीं। अगर बुत परस्त हो तो बुत परस्ती करने की जरूरत नहीं। इस दुनिया की चीजों और दुनिया की फिक्र में जिंदगी गुजारते हो तो पालूस कहता है इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्यों? कहता है कि पस अब तुम इस वक्त, इस लम्हा, इसी घड़ी, जिस वक्त कोई यीशु मसीह को कबूल करता है कि वो निजात दिंदा है, खुदा का बेटा है, मुर्दों में से जी उठा है, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा, पालूस कहता है पस अब तुम परदेसी और मुसाफर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। सो इस जमीन पर हम मुसाफर हैं, ये हमारा असली वतन नहीं। इस जमीन पर हम मुसाफर हैं और परदेसी हैं, क्योंकि हमारा जो असल वतन है वो कहां पर है? आसमान पर है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शिगिर्दों से उन भेदों को, उन सच्चाइयों को बयान कर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों का हौसला बढ़ाते हुए, उन शिगिर्दों का जो आने वाले दिनों में यीशु मसीह का इनकार करेंगे, जिसमें पत्रस, जिसने 3 दफा यीशु मसीह का इनकार किया, जिसमें बहुत से शिगिर्द हैं जो यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाएंगे, जिसमें बहुत से शिगिर्द हैं जो यीशु मसीह के नाम से कतराएंगे और छुप जाएंगे। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह 14 बाब उसकी पहली आयत में अपने शिगिर्दों से, उस रात जब यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, गसमनी बाग में था, तो शिगिर्दों से बात करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, यानी कि आसमान पर जो खुदा की हजूरी है उस जगह पर बहुत से मकान हैं। इसलिए जब कोई ईमानदार यीशु मसीह में मरता है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि वो दोजक में जाएगा या दोजक में जाएगी। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है, यीशु मसीह कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु मसीह झूठा नहीं, इंसान झूठ बोलते हैं, खुदा झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए उसने कहा कि अगर ना होते वहां पर घर या मकान रहने के लिए ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और यही बात पालूस रसूल यहां पर सिखाना चाहता है कि बस अब तुम परदेशी और मुसाफर नहीं रहे, बल्कि मकदसों के हम वतन, यानी कि वो जगह जो यीशु मसीह ने तैयार की है, वो घर जो यीशु मसीह ने हर एक ईमानदार के रहने के लिए तैयार किया है, वहां पर तुम जाओगे। इसलिए इस जमीन पर वो कहता है, जब तक हम जिंदगी गुजारते हैं हम मसीह के लिए जिंदगी गुजारें, जो कुछ भी यहां पर करते हैं मसीह के लिए करें, हमारी जिंदगी गवाही होनी चाहिए, ना कि हमारे गले में कोई सलीब देखकर कहे कि ये मसीही है, बल्कि हमारे उठने, हमारे बोलने, हमारे बैठने, हमारे ईमान से, हमारी जिंदगी की गवाही से कि खुदावन खुदा जिंदा है, लोग जाने के हम मसीह के घराने के लोग हैं, घराने के लोग हैं। क्योंकि यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 12वीं आयत में खुदा का बंदा यूहन्ना यही बात कहता है कि वहां पर लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाते हैं। इस जमीन पर हम मुसाफिर हैं और यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ एक हवाला निकाले, पालूस रसूल इस बात को बड़े वाजह तौर पर कह देता है, फिलिपियों 3 बाब। ईमानदारों को वो कहता है कि तुम नाउम्मीदी में जिंदगी ना गुजारो, अगर तुम इस जमीन पर गरीब हो तो आसमान पर तुम बहुत ही अमीर होगे, आसमान पर तुम्हारा बहुत बड़ा अजर होगा। और क्या कहता है फिलिपियों 3 बाप उसकी 20वीं आयत, मेरे साथ 17वीं आयत से पढ़े। यहां पर पालूस कहता है, ऐ भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानत बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिनका नमूना तुम हम में पाते हो। पालूस कहता है कि भाइयों मेरी तरह बनो, जिस तरह मैं मसीह पर ईमान रखता हूं और उसके लिए जिंदगी गुजारता हूं, तुम भी मेरी मानत बनो। 18वीं आयत में कहता है, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उस दौर में बहुत से ऐसे लोग थे जो मसीह की गवाही की बजाय, मसीह को इज्जत देने के बजाय, मसीह के नाम को जलाल देने की बजाय क्या कर रहे थे? बदनाम कर रहे थे। पालूस कहता है कि उन जैसे ना बनो, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से, अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। और क्या कहता है 19वीं आयत में? उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। इसीलिए पालूस कहता है, पस अब तुम परदेशी और मुसाफिर नहीं हो, इस जमीन की चीजों के ख्याल में ना रहो। क्योंकि उस दौर में बहुत से लोग थे और आज के दौर में भी बहुत से लोग हैं जो अपने पेट के लिए, दुनिया की चीजों के लिए जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन 20वीं आयत में क्या कहता है? ये आपका और मेरा वतन है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। 20वीं आयत में, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं लेकिन फिर वापस आऊंगा ताकि तुम्हें साथ ले जाऊं। आज आप सबकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं, आप खुदा के घर के लोग हैं, इसलिए उसके लिए जिंदगी गुजारें, यीशु मसीह पर ईमान रखें और यीशु मसीह की तरफ हर एक की तवज्जो दिलाएं कि यीशु मसीह आपको निजात, यीशु मसीह आपको शिफा, यीशु मसीह आपकी नाउम्मीदी में उम्मीद और यीशु मसीह आपकी जिंदगी है। उसके बगैर कोई जिंदगी नहीं, आए हम खुदा के हुजूर झुके। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, और तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम तेरे घराने के लोग हैं, और हमारा आसमान पर बहुत ही उम्दा घर तूने तैयार किया है। तो हम सबको आसमानी घर के लिए ज़िंदगी गुजारना बसर करना सिखा, और इस ज़मीन पर ज़मीनी लोगों के हम शक्ल ना बने, बल्कि रूहानी रहते हुए ज़िंदगी बसर करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।